ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार ने एसईई के नतीजों में अहम सुधार लाने के लिए नीतिगत पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन, लोगों की इच्छा के अनुरूप संविधान की समय पर समीक्षा पर सभामुख देवराज घिमिरे ने दिया जोर। सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करने के लिए गठित कार्य समूह ने सरकार को सौंपी है रिपोर्ट। कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की को प्रदेश सभा से विश्वास मत हुआ प्राप्त और लेबनान में पेजर के जरिए हुए सिलसिलेवार धमाकों से मरने वालों की संख्या पहुंची 12। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई का परिणाम लगभग 70% तक बढ़ाने के लिए नीतिगत पहल शुरू कर दी गई है। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2081 मूल समारोह समिति के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिश कर रही है और स्पष्ट किया कि छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से मुख्य विषयों को पढ़ाकर महत्वपूर्ण एसईई के नतीजों में सुधार किया गया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने उच्च शिक्षा स्कूल स्तर और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने वाले परिसरों स्कूलों और संस्थानों को पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टराय ने शैक्षिक प्रणाली में सुधार पर जोर दिया। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने दावा किया है कि संसद में रासोपा के सभापति को लेकर पार्टी द्वारा उठाए गए सवाल अब साबित हो गए हैं। आज पार्टी केंद्रीय कार्यालय में एक महीने के विशेष अभियान की शुरुआत करते हुए अध्यक्ष देउवा ने कहा कि जब संसदीय जांच विशेष समिति का गठन किया गया था तो उन्हें विश्वास नहीं था कि रासोपा के सभापति रवि लामिछाने ने सहकारी रकम में धोखाधड़ी की है, लेकिन अब पुष्टि हो गई है। सभापति देउवा ने पार्टी के संगठन के विस्तार पर ध्यान देने और आंतरिक विवादों को निपटाने के भी निर्देश दिए। सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करने के लिए गठित कार्य समूह ने आज अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय को रिपोर्ट सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए कार्य समूह के सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने और उनमें आशा जगाने वाले कार्यक्रम और योजनाएं साझा कार्यक्रम में शामिल किया गया है। कांग्रेस महामंत्री थापा ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े बहुचर्चित घोटालों की जांच सरकार करेगी। सभामुख देवराज घिमिरे ने कहा है कि संविधान को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित सभी लोगों को एक दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय करना चाहिए। आज ललितपुर में आयोजित अंतर संवाद कार्यक्रम में सभामुख घिमिरे ने कहा कि सभी का ध्यान संहिता के आधार पर संविधान के प्रावधानों को लागू करने पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की इच्छा के अनुरूप संविधान की समय पर समीक्षा होनी चाहिए और कुछ कानूनों में विसंगतियों को दूर करना आवश्यक है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा है कि डाक सेवाओं को चुस्त लचीला और विश्वसनीय बनाने के लिए उन्हें प्रविधि के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। आज दिल्ली बाजार स्थित गोशवारा डाकघर का निरीक्षण करते हुए मंत्री गुरुंग ने ग्राहक अनुकूल और विश्वसनीय तरीके से काम करने का कर्मचारियों को निर्देश किया। सरकार के प्रवक्ता समेत रहे मंत्री गुरुंग ने सप्ताह में एक दिन ट्रकों के माध्यम से डाक सेवाएं प्रदान करते आ रहे डाकघर को अब से दैनिक आधार पर ट्रक डाक सेवाएं संचालित करने का निर्देश किया। डाकघर की सभी गतिविधियों को डिजिटल बैंक ई सेवा QR के माध्यम से भुगतान की प्रणाली पर ले जाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि विश्व डाक संघ से समझौता किए होने के कारण संघ के मानकों के अनुसार डाक कार्यालय की संरचना बनाई जानी चाहिए। मंत्रालय की सचिव राधिका आर्याल ने कर्मचारियों को निर्देश किया कि वो डाक सेवाओं को आम लोगों की पहुंच मिलाने के लिए रणनीति बनाएं, क्योंकि समय रहते प्रविधि अनुकूल डाक प्रणाली बनाने की जरूरत है। कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की ने विश्वास मत प्राप्त किया है। प्रदेश सभा की बैठक में मुख्यमंत्री कार्की ने विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 66 और विपक्ष में 15 मत प्राप्त हुए थे। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा है कि नेपाल के प्रजातांत्रिक आंदोलन में दिवंगत गणेश मान सिंह की भूमिका अहम थी। नेपाली कांग्रेस के संस्थापक एवं 2046 साल के जन आंदोलन के सर्वोच्च कमांडर गणेश मान सिंह की काठमांडू के शोभा भगवती स्थित शालिक पर माल्यार्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री सिंह ने कहा कि सिंह अपनी पहचान बनाने में सक्षम थे। देश में लोगों को सशक्त बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के कारण लोगों के बीच पसंदीदा नेता थे। भौतिक पूर्वाधार तथा परिवहन मंत्री देवेंद्र दाहाल ने कहा है कि सरकार जल्द ही सार्वजनिक परिवहन किराए के समायोजन पर निर्णय लेगी। दशहरा, दीपावली, छठ जैसे त्योहारों के लिए सार्वजनिक परिवहन के प्रबंधन को लेकर आज मंत्रालय में हुई बैठक में मंत्री दाहाल ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन के किराए को एक पैकेज में समायोजित करने की जरूरत है। उन्होंने त्यौहार के दौरान परिवहन सेवाओं को सुविधाजनक बनाने, टिकट पहले से खोलने और यात्रियों को सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था करने का भी संबंधित निकायों को निर्देश किया। मंत्री दाहाल ने कहा कि संघीय सरकार ड्राइवर के लाइसेंस के लिए लगभग 21 लाख लाइसेंस प्रिंट करेगी और बाकी काम प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। चुनाव आयोग ने आगामी स्थानीय तह के मार्गशीर्ष 16 गते रविवार होने वाले उपचुनाव की कार्यतालिका को मंजूरी दे दी है। आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद सापकोटा ने बताया कि उपचुनाव को व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए आयोग और उसके अधीन स्थल कार्यालयों द्वारा समयबद्ध तरीके से किए जाने वाले कार्य को शामिल करते हुए कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है। संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय दिवस 2081 की पूर्व संध्या पर आज ललितपुर के खुमलटार में रेडियो नेपाल के रिले स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए रेडियो नेपाल के संचालक समिति के अध्यक्ष एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय की सचिव राधिका आर्याल ने कहा कि लंबे इतिहास वाला गौरवशाली संस्था रेडियो नेपाल ने संविधान दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया है, जिससे वातावरण संरक्षण के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। संचार सचिव आर्याल ने बताया कि सरकार ने आश्विन 2, 3 और 4 गते को संविधान दिवस और राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय किया है और विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों के साथ इस दिन को सफल बनाना सभी की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक अमर ध्वज लामा ने कहा कि रेडियो नेपाल सत्य एवं विश्वसनीय समाचार एवं सूचनाएं प्रसारित करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण सहित अन्य जन जागरूकता गतिविधियों में सहभागी होते आया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। लेबनान में पेजर के जरिए हुए सिलसिलेवार धमाकों में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद ने कहा है कि मरने वालों में एक 8 साल की बच्ची और एक 11 साल का लड़का शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अबियाद ने कहा कि पेजर धमाकों में मारे गए लोगों में स्वास्थ्यकर्मी भी थे, वहीं 2,750 घायल अस्पतालों में भर्ती है। उन्होंने कहा कि कुछ घायलों को बेहतर इलाज के लिए विदेश भेजा गया है। अबियाद के अनुसार कुछ घायलों को ईरान और सीरिया भेजा गया है, लेकिन 98% लोगों का इलाज देश में ही हो रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने एसईई के नतीजों में अहम सुधार लाने के लिए नीतिगत पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन, लोगों की इच्छा के अनुसार संविधान की समय पर समीक्षा पर सभामुख देवराज घिमिरे ने दिया जोर। सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करने के लिए गठित कार्य समूह ने सरकार को सौंपी है रिपोर्ट। कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की को प्रदेश सभा से विश्वास मत हुआ प्राप्त। और लेबनान में पेजर के जरिए हुए सिलसिलेवार धमाकों से मरने वालों की संख्या 12। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शिवरात्रि।